शांति। अव्यक्त बाप दादा द्वारा आपको विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच विराजमान है, आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप यूपी कानपुर की धरनी से निकले, ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1954 में आपका जन्म हुआ और 4 वर्ष की आयु में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। आप अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे। 1971 में पहली बार मधुबन आए, आपको दीदी मनमोहिनी जी और दादी प्रकाशमणि जी ने स्नेह से ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं की जानकारी दी और 1972 में परिवार की स्वीकृति से आप मधुबन धरनी पर समर्पित हुए। आरंभ में आपने अनेक कर्मणा सेवा की, उसके पश्चात आपने एप्लीकेशन दी दादियों के पास कि आपको टाइप सीखनी है। दीदी मनमोही जी ने आपकी कुशाग्र बुद्धि को देख आपको पहले सिंधी सीखने के लिए कहा, फिर सिंधी मुरलियों को हिंदी में ट्रांसलेट कर टाइप करके उन मुरलियों को सभी सेवा केंद्रों पर भेजने की सेवा में सहयोगी बनाया। आप मुरलियों में जो वरदान स्लोगन आते हैं उन्हें तैयार करते हैं। दीदी दादियों के पास जो पत्र व्यवहार आते रहते हैं उन्हें उत्तर देने का कार्य भी आप संभालते हैं। आपके त्याग तपस्या को देख दीदी दादी ने आपको 1976 में मुरली विभाग की सारी जिम्मेवारी सौंप दी। तो तीनों कॉम्प्लेक्स के मुरली डिपार्टमेंट आपके निर्देशन पर चढ़ते हैं। इस डिपार्टमेंट में स्टेशनरी और फोटोकॉपी कराना ये भी कार्य चलता रहता है। स्वहन्नति हेतु जो प्रति मास पत्र पुष्प निकलता है उसका संपादन आप करते हैं। आपने ईश्वरीय महावाक्यों को संग्रहित कर समय प्रति समय कई पुस्तकें लिखी है, जैसे ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा आदि आदि। अव्यक्त मूल्यों पर पीस ऑफ माइंड चैनल पर टॉक शो अमूल्य रतन, जिसके 1300 एपिसोड प्रसारित हुए हैं। आप कृषि एवं ग्राम विकास विभाग के वाइस चेयरपर्सन हैं। इस प्रभाग द्वारा शाश्वत योगी खेती, जहां विज्ञान के साथ अध्यात्म का समन्वय करते हुए कृषि जगत में क्रांति लाई है। सतत अध्ययन मनन चिंतन करने के कारण आपकी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरा हुआ है तथा योग की जो गहन अनुभूति की है उसके आधार पर आप अपने क्लासेस द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू ही तब आप एक दिन में 5-5 क्लासेस कराते थे, तो बाप दादा द्वारा मिला हुआ दिव्य बुद्धि का वरदान को आपने प्रत्यक्ष किया है। तो आज का विषय जो है, आज के विषय पर निर्विघ्न स्थिति पावरफुल वायुमंडल पर प्रकाश डालेंगे भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में, बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि पांडव भवन में 3 दिन आप सब ने बहुत अच्छी तपस्या की। सभी ने अच्छा किया ना, मजा आया सबको। इतनी दूर से बाबा ने आपको यहाँ बुलाया, और मैं समझता हूँ बहुत भाई बहने ऐसे होंगे जिन्होंने पांडव भवन में पहली बार स्टे किया होगा। कोई तो पहले रहे हैं, लेकिन अधिकतर जब से शांतिवन बना है तब से सब नीचे ही आते हैं, ऊपर से 4 धाम करके चले जाते हैं। तो 4 दिन रह करके इतनी शक्तियां अपने अंदर जरूर भरी होंगी, जो कोई भी विघ्न आए, ऐसा तो नहीं विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आएंगे ही। और बाबा कहते बच्चे विघ्नों से डरना नहीं, विघ्नों का तो आह्वान करना है। कोई भी अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होता है वो पेपर से घबराता या डरता नहीं है, तो आह्वान करता, आने दो, आएगा तो हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी कई प्रकार के पेपर आते हैं, हम उनको विघ्न कहते, परिस्थितियां कहें, समस्याएं कहें, बात तो एक ही है। लेकिन बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसी निर्विघ्न स्थिति बनाएं, खुद की भी स्थिति निर्विघ्न रहे, अपने साथियों को भी निर्विघ्न बनाएं, और साथ साथ इस वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं इस वायुमंडल के अंदर बहुत सी नेगेटिविटी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक और कई ऐसी आत्माएं हैं जिनको शरीर नहीं मिला है, भटक रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पेपर बन करके परीक्षा लेने के लिए आती हैं। कई ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं, विकारों के अधीन हैं, संस्कारों के अधीन हैं, वो भी चलते चलते अचानक कई प्रकार की रुकावटें डालते हैं, विघ्न रूप बन जाते हैं। वायुमंडल को हम सब जानते हैं, कलयुग का अंतिम समय है और इस अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति होनी है। विकारों की भी अति है, पांचों विकारों का फुल फोर्स है। प्रकृति के पांचों तत्व भी तमोगुणी तमोप्रधान, उनका भी फोर्स है और प्रकृति तमोगुणी होने के कारण कई प्रकार के विघ्न शारीरिक मानसिक शरीर के ऊपर भी आते हैं, मन के ऊपर भी आते हैं। और कुछ पिछले ऐसे खाते कर्म हैं, हिसाब किताब बनाए हैं, जो भी सामने सामना करते हैं, विघ्न रूप बनकर के आते हैं। हम सब बाबा के बच्चे बने, बाबा को साथी बनाया, सर्वशक्तिमान का साथ है, उनकी छतरी ऊपर है, छत्र छाया के नीचे रहते हैं, इसलिए विघ्न आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, खेल खेल में पार कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ने विघ्नों को ज्यादा सोच लिया ना तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, कोई सोचते हैं पता नहीं मेरे आगे ही सब विघ्न क्यों आते हैं। शरीर का भी आ जाता है चलते चलते, मन का भी आता है, मन एकाग्र नहीं होता, बहुत भटकता है, संबंधों में भी बहुत सारी रुकावटें, क्लास में नहीं आने देते, योग करने नहीं देते, पवित्र नहीं रहने देते, वो भी विघ्न आते हैं। संबंधों में बहुतों के आगे विघ्न रहते हैं और चलते चलते कई बार आर्थिक रूप में भी धन के भी विघ्न आते हैं। बड़े अच्छे करोड़पति, अच्छे अच्छे साधन सुविधाओं में रहने वाले, पलने वाले, अचानक ही कुछ कारण बनते हैं जो दिवाला मार देते, या कई बार कुछ किसी से थोड़ा सा उधार लिया, कर्ज ले लिया, तो वो कर्जदार तंग करता रहता है, बैठने नहीं देता है, मर्ज हो जाता है उसका। तो अनेक प्रकार के विघ्न इस कलयुग की देन है। भले हमने कलयुग का किनारा छोड़ा है, संगम युग पर आए हैं, फिर भी कुछ न कुछ लेस मात्र उनका भी सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, सोचना भी नहीं है, वर्णन भी नहीं करना है। अगर किसी के आगे वर्णन कर दिया तो वो बात ऐसे वायुमंडल में फैल जाती है, तो छोटा सा विघ्न एक बहुत बड़ा पहाड़ बन करके आ जाता है। कई लोग तो बहुत छोटी सी बात होती है, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, चारों तरफ उस बात का वर्णन कर देते, और वो इतना तिल जितना छोटा सा विघ्न एक बहुत बड़ा पहाड़ ताड़ जैसा बन जाता है। इसलिए क्या करना है, बाबा कहता है कि कोई भी प्रकार का विघ्न आता है, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। अपने आप को बाबा से इतना कनेक्ट करके रखो, सबसे पहली शक्ति है परखने की शक्ति। कई बार विघ्न कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, हम परख नहीं पाते, और जब परख नहीं पाते हैं उसका वार हो जाता है तो हाय हाय करते, परेशान होते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मान लो आज आप माउंट आबू आ रहे थे, अगर माउंट आबू के वेदर के बारे में आपको ज्ञान न हो, गर्मी से आए, अनेक प्रकार के पेपर को पास करते हुए मधुबन पहुंचे, आए हैं यहाँ लाभ लेने के लिए, योग तपस्या करने के लिए, लेकिन अगर इस वायुमंडल का, इस प्रकृति के, इस ठंडी हवाओं का पता ही न हो तो आते ही कई तो बीमार पड़ जाते, कईयों को सर्दी लग जाती, कईयों के जोड़ों में दर्द होने लगता, तो जो फायदा लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, उनके आगे वो शारीरिक प्रॉब्लम आने लगती है, मानसिक शारीरिक दोनों डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब इसकी समझ चाहिए। इसके लिए बाबा कहता है, बच्चे देखो, श्री गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। हमेशा जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो श्री कृष्ण गणेश का या स्वास्तिका का पहले पूजन करते हैं, उसका चिन्ह बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये विघ्न विनाशक का चिन्ह है। विघ्न विनाशक और दूसरा उसका टाइटल है विद्यापति। विद्यापति नॉलेजफुल, नॉलेजफुल होने के कारण वो हर विघ्न को पहले से ही परख लेता है। सूंड इतनी लंबी है, सूंघ लेता है, पता चल जाता है। और नॉलेजफुल होने के कारण उस विघ्न की परवाह नहीं करता, उसको पार कर लेता है। हम सब बाबा के बच्चों को बाबा ने इस समय की नॉलेज दी है कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, और ये भी समझ दी है कि जो भी तुमने 63 जन्मों में देह विमान के कारण कुछ भी गलत कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, तो यही एक समय है थोड़ा सा संगम का, जिसमें किए हुए 63 जन्मों का जो रहा हुआ हिसाब किताब है वो चुप तो कहना है। अब इसके लिए हमें ज्ञान और योग का बल चाहिए, दुआओं का बल चाहिए, पुण्य की पूंजी चाहिए। अगर किसी के पास ज्ञान और योग का बल है, अच्छा चिंतन है, ज्ञान की हर पॉइंट में उसका स्वरूप बना है, उसके विषय में जानता है कि बाबा ने हमें बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि कर्मों की गहन गति बहुत गुहे है, जो कुछ हमने ऐसे कर्म किए हैं वो इस अंतिम जन्म में हमारे सामने पेपर बन करके, विघ्न बन करके आते हैं, आएंगे। लेकिन कईयों को वो विघ्न बहुत परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, दुखी कर देते हैं, और कई हंसते हंसते, खेलते खेलते, बातचीत से ही उस विघ्न को पार कर लेते हैं, उसका वर्णन चिंतन नहीं करते। बाबा कई बार कहते हैं, जिन बच्चों के पास दुआओं की शक्ति है, दुआओं का बल है, उनके आगे अगर कोई पेपर आता भी है विघ्न रूप बन करके, तो दुआएं उसके लिए बहुत सहज पार करने के साधन बन जाती हैं। हमारी दादियों के सामने भी शारीरिक विघ्न तो आया, काफी समय तक रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने पीड़ा का अनुभव, दर्द का अनुभव कभी भी मिलो। आज हमारी दादी प्रकाशमणि के दिन चल रहे हैं, सबको पता है, कभी भी उनके अंदर से ये नहीं आया कि मेरे को आज दर्द है, मैं बीमार हूँ। एक बार की बात मैं दादी की सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत समय मैं दादी के साथ बहुत समीप रहा हूँ। एक दिन भी शायद जब वो यहाँ पर होती या मैं होता, तो जिस दिन न मिलूँ, कहाँ गए थे, क्यों नहीं मिले, क्योंकि सब पत्र व्यवहार, मुरलियों का कार्य दादी के साथ ही करना, बैठना, पूछना। तो एक बार दादी जी बॉम्बे हॉस्पिटल से आई थी, काफी तबीयत खराब थी, लेकिन थोड़ा सा बोलना शुरू किया था, बिस्तर पर ही थी, तो मैं मिलने के लिए गया शांतिवन में, और मैं अपने साथ एक डायरी पेन लेके गया, क्योंकि करीब 2 या 2.5 साल से दादी ने कोई पत्र अपने बोल करके नहीं लिखाया था। वैसे मैं लिखता था तो दादी पास करके देती थी, तुमने बहुत अच्छा लिखा, इसमें ये डाल दो, इसमें ऐड कर दो। लेकिन 2-2.5 साल तक दादी जी के नाम से, दादी प्रकाशमणि की तरफ से मैं पत्र लिखता रहा। तो जब दादी आई तो मैंने कहा, अभी मैं आज दादी को कहूंगा कि अभी हमारा ये कार्य मैं बंद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लिखाना बंद कर दिया, आप पढ़ना बंद कर दिया, तो आपके नाम से मैं कब तक पत्र लिखूंगा। तो मैं जब दादी जी के पास पहुंचा तो बिस्तर पर ही थी कमरे में, तो ऐसे दादी को बिठाया हुआ था, तो मैंने कहा, दादी ऐसा है कि अगर आप पत्र लिखाएं अभी भी तो मैं लिखूंगा, अगर आप समझती हैं तो मैं समझता हूं इसको बंद कर देना चाहिए। पत्र पुष्प में दादी का पहला पेज होता है तो दादी कहती नहीं नहीं तुम मेरे से बहुत अच्छा लिखता है, दादी ने तुमको छुट्टी दी है मेरे नाम से लिखो, तुमको लिखना बंद नहीं करना, लिखना ही है। मैंने कहा दादी मेरी दिल खाती, मुझे लगता है कि मैं दादी प्रकाशमणि की तरफ से उनकी साइंस से पत्र भेजता हूं। तो कहती है नहीं तुम बहुत अच्छा लिखता है, बहुत बहुत महिमा करने लगी अपनी तरफ। हमने कहा नहीं, अगर आप लिखाओगे तो मैं लिखूंगा। अभी मेरी डिबेट चल रही थी, उसी डिबेट के बीच में गुलजार दादी आ गई और गुलजार दादी बहुत मीठी मुस्काते हुए जैसे बाबा बोले ऐसे बोले, आज क्या दोनों रूहरियान बड़ी देर से कर रहे हो। तो दादी कहती है आज पता नहीं इसको क्या हो गया है, इतने दिन से इतने अच्छे पत्र मेरे नाम से लिखता है, सब खुश होते हैं, दादी का पत्र आया, दादी का, आज कहता है मैं इसको बंद कर देता हूं, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखाओगी तो लिखूंगा। तो दादी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए दादी बोलते दादी आपको लिखाना तो चाहिए, दादी आपको लिखाना तो चाहिए। अब दादी चुप, क्योंकि गुलजार दादी की बात को वो ऐसे स्वीकार करती थी जैसे बाबा ने कहा है, बहुत बहुत प्यार अंदर का जिगरी था, तो लिखाना तो चाहिए। तो मैं बैठा था तो दादी कहती अच्छा लिख लिख, और मैं डायरी पेन तो ले गया था, जब मैंने लिखना शुरू किया मैंने दादी बोलो, कहते लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, ये कैसे लिखूंगा 100% ओके है, आप और लोग समझेंगे और झूठा लिखता है अपनी तरफ से, ये तो गलत बात, मैं नहीं लिखूंगा ये। कहती क्या हुआ मेरे को, अब मेरे से पूछा मेरे को क्या हुआ है। मैं दादी क्या हुआ ऐसा कैसे मैं बोलूं क्या नहीं हुआ है, आप अभी बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, आपको ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, आप क्लास में नहीं जा सकते हैं, और हम कहें दादी 100% ओके है तो लोग तो आपके पास लाइन लगा देंगे आके मिलने वाले, दादी ठीक है तो हमको मिलने क्यों नहीं देते हैं। तो कहती मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है। अब डॉक्टरों का चक्कर कह के मेरे को हल्का किया, फिर कहती है 19-20 तो चलता है ना, पुराने शरीर हैं, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, मैं कोई बीमार हूं क्या, तुम क्या समझता है मैं बीमार हूं, अब मेरे से पूछने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं दादी आपको कौन बीमार कहता है, नहीं नहीं मैं 100% ओके हूं, न मुझे दर्द है न मुझे कोई तकलीफ है, मैं तो बाबा की याद में बाबा की गोदी में हूं। मैंने इतना दुआओं का बल, जो इतनी अच्छी स्थिति है इतनी बीमारी में भी उन्होंने कभी ये वर्णन नहीं किया कि मैं बीमार हूं या मुझे कोई दर्द है मुझे कोई तकलीफ है। अगर कुछ हिसाब किताब आ रहा है तो कुछ डॉक्टरों के साथ यज्ञ का हिसाब किताब होगा, मेरा कुछ नहीं है। और मुझे तो बाबा की परिवार की बड़ों की सबकी दुआएं हैं, और दुआ जिसको मिलती है उसको कोई दर्द तकलीफ हो सकती है क्या। तो मैंने लिख दिया चुपचाप 100% ओके। फिर एक दूसरा शब्द कहती है बोलो लिखो दादी सबको ऐसे ऐसे हाथ किया, सबको बहुत प्यार से भाकी में भर रही है, सबको बहुत प्यार कर रही है। मैं जब ये लिखने लगा कहती नहीं रुक 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 नहीं लिखना, मैं थोड़ी भाकी पहन सकती हूं सबको, तो बाबा पहन सकता है, गुलजार ये लिखना चाहिए या नहीं, गुलजार दादी बाजू में बैठी है। गुलजार दादी कह रही दादी आप नहीं प्यार करोगी तो कौन करेगा, बाबा थोड़ी साकार में बैठा है, साकार में तो आप हैं बाबा की सीट पर, जरूर लिखो। गुलजार दादी कहती जरूर लिखो। ऐसे बड़ी चिटचैट, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा वातावरण था। इन दादियों ने अपने योग बल से अपनी पवित्रता के बल से अपनी सेवाओं के बल से कोई भी विघ्न को विघ्न महसूस नहीं किया। बातें क्यों नहीं आई, यज्ञ के ऊपर आई, परिवार की तरफ से आई, कोई ज्ञान की गिलानी करता है, कोई यज्ञ की गिलानी कराने लगता है, कहीं कुछ अखबारों में उल्टा आ जाता है, कभी प्रकृति के द्वारा, कभी सरकार के द्वारा, कभी कहीं से पेपर तो आते हैं, विघ्न तो आते हैं, लेकिन इन्होंने विघ्नों को ऐसा खेल की रीति से पार किया है जो कभी भी कभी वर्णन नहीं किया। और कोई के आगे अगर विघ्न आया भी कोई बड़ी बात नहीं, सोचना नहीं तुम। मैं एक बार बीमार पड़ गया अचानक, उन्होंने मुझे इतना हंसाने की, इतना बिजी करने की कोशिश की कि अगर फ्री रहेगा तो इसके मन के ऊपर आ जाएगा मैं बीमार हूं, फ्री नहीं रहना। कोई सो जाएगा ना, अगर मान लो आपको बुखार हो गया, आपको कोई ऐसी तबीयत बिगड़ गई और आप उसको सोचते रहे मैं तो बीमार हूं, मैं तो कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं तो कोई, तो सोचते सोचते जो शरीर की बीमारी का प्रभाव है वो मन के ऊपर आ जाए। और मन अगर किसी का बीमार हो गया तो कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, मानसिक पीड़ा है वो। इसलिए शरीर की भोगना को कभी भी भोगना का, कभी भी बीमारी का प्रभाव मन के ऊपर ना आए, इस पर ध्यान देना। ये बहुत बड़ा विघ्न बन जाएगा, और ये विघ्न है तो दूसरे जो विघ्न है वो भी सामना करने लगते हैं। इसलिए हम सबको अपने मन की स्थिति को बहुत शक्तिशाली समर्थ बना करके रखना है। मन शक्तिशाली है तो कोई भी पेपर आएगा पार हो जाएगा। इसलिए कई बार संस्कारों का पेपर आता है, संस्कारों का जब पेपर आता है तो आपस में दो लोग चार लोग संगठन में नहीं रह पाते, प्यार प्रेम से चल नहीं पाते, एक परिवार के सदस्य वो भी साथ में नहीं रहते। कलयुग के अंदर तो क्या हो जाता है, दो भाई भी एक साथ नहीं खा सकते बैठ सकते, दो चूल्हे जल जाते। बहुत बड़ा विघ्न है परिवार का ये। अगर बहू आ गई घर में तो माँ बाप की बेचारे की कोई इज्जत नहीं रहती, उसको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, उसको कोई नहीं पूछता है। अब उसके लिए तो बहुत बड़ा विघ्न है, जिन बच्चों को पढ़ाया पालना किया बड़ा किया योग्य बनाया और बड़े प्यार से उनकी शादी भी कराई, और उसके बाद वही बच्चे एक के कारण दुश्मन हो जाते हैं। अभी एक परिवार मेरे पास आया है, इतना अनन्य बाबा का रतन है, दो बच्चियों को उसने समर्पित किया, दो बेटियां उसकी समर्पित हैं। अब उसको दिल हुई मैं खेती की जमीन लूं, बहुत बड़ा इंजीनियर था रिटायर हुआ, उसको पैसा मिला करीब 60-70 लाख मिला, तो खेती की जमीन वो अपने नाम से नहीं ले सकता क्योंकि खुद खेती करने वाला किसान नहीं था। तो सोचा बेटे की शादी की है और इसकी बहू है गांव की है, उसके नाम से उसने वो खेती ले लिया। प्यार होता है, भावना होती है, वो भी बहुत पहले आते हैं तो बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे। 56 लाख की खेती ले लिया, सारा पैसा जितना था उसके नाम से खेती ले लिया। थोड़े दिन तो बहुत अच्छी किया, योगिक खेती किया, 5-6 साल 10 साल नाम हो गया, भाई बहुत अच्छी खेती, बहुत अच्छी की, मैं भी होके आया पिछले साल। अब उस बेटी के बहू के माँ बाप और परिवार में लोभ लालच आ गया कि इसके नाम से खेती है, करोड़ों की खेती हो गई, अभी जमीन हो गई। उसको भड़का दिया, बहन को, बेटे को भड़का दिया, तेरे नाम से है ना। और वो बाप बेचारा अपना थैला भी नहीं लिया, ऐसे चुपचाप वहां से निकल के मेरे पास आ गया। कहता है अभी ऐसा हो रहा है, हमको जीने नहीं देंगे वहां, सब कब्जा कर लिया है, सब ने अपना अपना कर लिया, बिना कोई मोबाइल तक नहीं लाया, एक ड्रेस नहीं लाया, ऐसे उठ करके यहां आ गया मधुबन में, बैठ गया करके मेरे पास। हमने क्या हुआ है, तुम तो इतनी अच्छी होगी खेती करता था, सुनाया कुछ नहीं, सुनाए नहीं, कहते वर्णन क्या करूं। बाबा कहता है कोई वर्णन नहीं करो, ये कोई हमारा पिछला हिसाब किताब था, बच्चा भी एंटी हो गया, बहू भी एंटी हो गई, युगल है वो भी वहां ही खेती पर है, लेकिन वो अपना सब समेट करके आ गया। अब विघ्न बहुत बड़ा, अगर वो मानसिक रूप से शक्तिशाली आत्मा न हो तो इस विघ्न का सामना सहज नहीं होता है, जहां सारी संपत्ति लगा दी हो बच्चों के पीछे और एकदम खाली हाथ हो जाए। तो मैंने कहा कोई चिंता नहीं करो, बाबा बेटा है, बाबा बेटा है ना, तुमने बेटा बनाया ना। बोला हाँ। हमने जाओ तो फोन में रहो जा करके, कमरा दे दिया उसको, 15-20 दिन वहां रहो, जब मन बिल्कुल शांत हो जाए तब बताना। अभी उसने पक्का कह लिया मुझे यही योगिक खेती करनी, मुझे वहां नहीं जाना, बैठा आकर के। बाबा उसका रखवाला है, बाबा को उसने अपनी सब कुछ दिए, बेटियां दी है, सब कुछ समर्पित है उसको बुद्धि से। लेकिन एक समझ, बाबा कहता वर्तमान समय कलयुग में समझदार बनने की जरूरत है, ऐसे नहीं सोचना मेरे आगे ऐसा और ही विघ्न आएगा, किसी के आगे भी आ सकता है, ये हिसाब किताब है पिछले जन्मों के। अगर समझदार है तो क्या करेगा, ऐसे किसी पर भावना रख करके, स्नेह रख करके, मोह ममता के कारण खुद खाली होकर के बैठ जाओ और दूसरे पर अर्पित कर दो, तो उस पेपर को सामना करना बड़ा मुश्किल होगा। ध्यान देना, बाबा ने यहां तक यज्ञ के दादियों ने, हमारी दादी जी कहती थी, कुमार जब आते थे, कुमार कमाते हैं मान लो कोई अच्छी पोस्ट पर है, आजकल आईटी के कारण कईयों की एक एक लाख दो दो लाख पे है, बहुत अच्छा कमाते हैं, उनको भी दादी समझाती है तुम ऐसी भावना में नहीं आ जाना जो सारा का सारा यज्ञ में या सेंटर पर दे देना, बैलेंस से चलना, नहीं तो आगे चल के पश्चाताप करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए विघ्न हो जाएगा, ज्ञान में भी चलना मुश्किल होगा, लोग तुमको बहुत थू-थू करेंगे कि इतना सब कमाया और तुमने सब दे दिया जाकर। इसलिए दादी जब कुमारों का क्लास कराती थी कहती थी तुम्हारी जवाबदारी भी है लेकिन तुम अपने पैसे को चार हिस्से में बांट दो, नहीं तो पैसा धन आपके लिए बहुत बड़ा विघ्न बन जाएगा। और चार हिस्सा ऐसे बंटवाती थी, पांच किसी का चार, कि ध्यान दो चार हिस्सा ऐसे करो, एक अपने शरीर निर्वाह के लिए करो, मान लो 1000 रुपये को बांटता हूं मैं, 250 रुपये अपने लिए रखो, 250 रुपये में बैंक में रख दो जिससे कभी आए वेल बीमारी आती, कोई दवाई की जरूरत, कभी कोई जरूरत तो बैंक में आता रहे, 250 अगर लौकिक जवाबदारियां हैं लौकिक के लिए रखो, और 250 सेवा केंद्र और मधुबन के लिए रखो, आना जाना है, यज्ञ में सहयोग देना है, तो ऐसे इसको चार भागों में बांटो। और अगर चार भागों की बजाय और कोई जवाबदारियां नहीं है तो पांच भाग भी कर सकते हो, हेल्थ के लिए है, बैंक में है, कुछ यज्ञ में है, कुछ सेंटर में है, सेंटर और यज्ञ को आधा कर दो, आधे में दो हिस्सा कर लो, तो जैसा आपकी कमाई है उस कमाई के हिसाब से शरीर निर्वाह भी ठीक चलता रहे, और समय आने पर अगर उसकी जरूरत है तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आपने कमाया है और आप फिर कमाने के बाद अगर सब कुछ गंवा दिया और फिर कहते हो अब मुझे जरूरत है, उधार लोगे तो कर्ज के मर्ज चढ़ेगा, और अगर नहीं है तो भूखे रहोगे, पेपर समझोगे, ज्ञान ध्यान छूट जाएगा। इसलिए समझदार बनना, समझदार व्यक्ति हर चीज को बहुत युक्ति से, बहुत बैलेंस से चलाता है, और बैलेंस से चलने वाले के आगे कभी भी कोई विघ्न रुकावट नहीं डालते। मान लो आपको कोई कहे, कोई क्लास सुन लो कि 2 बजे उठ के योग मम्मा करती थी, हमको मम्मा के समान बनना, हमको 2 बजे उठ के योग करना, कभी ये नहीं सोचा कि मम्मा सोती कितने बजे थी, मम्मा की दिनचर्या क्या थी, 2 बजे उठती थी वो पक्का करके। कई लोग आकर के 2 बजे उठना शुरू कर देते, उनको दिन में रेस्ट नहीं मिल रही है, वो रात को 11-12 बजे तक सो पाता है, 1-2 घंटा 2.5 घंटे अगर केवल नींद कर रहा है तो शरीर उसका कब तक साथ देगा। उसको समझ चाहिए, उसको ऐसे नहीं किसी के कहने से, किसी क्लास को सुनने से आप अपने आप को उसी तरह से ढालना चाहें, अपनी दिनचर्या पर पहले ध्यान दो। अगर आपके पास टाइम है, आपको दिन में आराम मिलती है, आप स्वस्थ हैं, आप कर सकते हैं तो अच्छा है, रेस करो, मना नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा में, भावना में आकर के इसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा किया है, उससे संपन्न बन गया, संपूर्ण बन गया, और आपने उसी तरह से अपने को भी ढालना चाहा, शरीर साथ नहीं देगा, मानसिक स्थिति साथ नहीं देगी, फिर क्या करोगे, पेपर हो जाएगा, विघ्न आ जाएगा, और उस विघ्न को पार करने के लिए फिर सहारा लेना पड़ेगा, दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, क्या करूं कैसे करूं। समझ, और इतनी अच्छी समझ बाबा हमें देता है, हर चीज का बैलेंस रखो, अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती, अति योग करोगे तो भी डिस्टर्ब हो जाओगे, और नहीं करोगे तो समझते हो माया कैसे थप्पड़ लगाती है, बैलेंस। बाबा ने अपने बच्चों को बैलेंस ऐसा अच्छा सिखाया, साकार मुरलियों में अगर आप देखेंगे कहा 3 हिस्से में अपने 24 घंटे की दिनचर्या को बांटो, 3 हिस्से में 8-8 घंटा करो, 24 घंटे को 8-8 घंटे में बांट लो, शरीर को 8 घंटा देना है, माना शरीर को 8 घंटा देना, माना इसमें सोए रहना 8 घंटा, स्नान करना है, भोजन करना है, कपड़े धोने हैं, शरीर के लिए जो जरूरत है 5 घंटा 6 घंटा शरीर की नींद, 1-2 घंटा और, 8 घंटा शरीर के लिए और 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए। कोई कर्मणा करना पड़ेगा, कोई नौकरी करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, खेती करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए भी 8 घंटा समय है। और 8 घंटे का लक्ष्य रखो, इसमें मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, योग करो, बाबा की सेवा करो, ज्ञान सुनाओ, प्रदर्शनी करो, कुछ भी करो, हमारी भविष्य कमाई का साधन 8 घंटा हमें देना है। इस प्रकार से 8-8 घंटे में अगर बांट लिया तो ये बहुत बैलेंस वाली जीवन आपकी बन जाएगी। और कहते हैं जहां बैलेंस होता है वहां ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वहां ही दुआएं मिलती हैं। अगर आपने मान लो बहुत जोश आ गया पुरुषार्थ करने का, बच्चे हैं, रचना रची है, जवाबदारियां हैं, घर की हैं, कई प्रकार की जवाबदारियां हैं, लेकिन आपको जोश आया, नहीं समय बहुत कम है, कुछ ही घंटे बचे, कुछ ही समय बचा है, मैं अच्छा पुरुषार्थ कर लूं, दिन रात उसमें लग गए, परिवार को नहीं देखा, जवाबदारियों को नहीं देखा, तो आगे चल करके सब के सब एंटी हो जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम होने लगता है। परमार्थ और व्यवहार, परमार्थ माना परमात्मा के निमित्त, ईश्वरीय सेवा के निमित्त समय देना है, लेकिन जो रचना रची है व्यवहार जो है उसमें भी पीछे नहीं हटना, उसका भी बैलेंस रखना है। अधिक व्यवहार में चले गए तो परमार्थ छूट जाता है, और अधिक परमार्थ की तरफ ही लग गए तो व्यवहार छूट जाएगा, और व्यवहार छूट जाएगा तो एक तरफ आप परमार्थ के लिए कमाई कर रहे हो, योग कर रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, और दूसरी तरफ व्यवहार अशुद्धि के कारण डिससर्विस जो हो रही है वो आपकी कमाई को माइनस कर देगी। इसलिए बैलेंस, बैलेंस बहुत बड़ी कला है, और बैलेंस से चलने वाला कभी भी किसी भी विघ्न को सहज पार कर सकता है। आएंगी, सबके आगे आती है। बाबा ने हम सबको कहा है बच्चे धैर्यता का गुण धारण करो, बहुत धैर्यवत बनो, तुरंत आई बात है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कई लोग बहुत सोच सोच करके अपने माथे को बहुत भारी कर लेते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बाबा कई बार कहते हैं जहां समस्याएं आती हैं वहां उसका समाधान भी होता है। ऐसे नहीं समस्या है, समस्या है, समस्या के साथ उसका समाधान है। अगर कोई कारण है तो उस कारण के साथ उसका निवारण भी है। और बाबा ने अपने बच्चों को बताए, दोनों बातें बताई हैं कि ये कारण हो सकते हैं और इस कारण का ये निवारण है, ऐसी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं उसका ये समाधान है। अगर कोई ने ठीक तरह से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी है, समझी है, बाबा की मुरलियों में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस बात को हम समझ करके पार न कर सके पेपर के रूप में, कैसी भी बातें आए। सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान के कारण आता है। बाबा ने कई बार कहा है बच्चे देह अभिमान ही सब पापों की जड़ है, जितनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, उनका मूल कारण है बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान। जब मैं पन में आए, जब पुरुषत्व जागृत हुआ, मैं कह करके देह अभिमान के कारण इंद्रियों में चंचलता हुई, उत्तेजनाएं आई, विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, और वही सब विघ्नों के कारण बन गए। अब हम सबको बाबा इसकी विधि बताते, समाधान बताते, बच्चे जितना समय हो सके मैं आत्मा इस शरीर की इन कर्मिंद्रियों की मालिक हूं। मालिकपन में उस ऊंची स्टेज में रह करके बैठो, कर्म करो, आधार लो, न्यारे हो जाओ। ये कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं, कभी आंख नाक मुख कान हाथ, दो कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। बाबा कई बार कहते हैं इनसे बहुत पाप कर्म होते हैं। एक आंखों को कहते हैं बाबा, जो देखा बुद्धि चल गई, दृष्टि वृत्ति खराब हो गई, चाहे खाने पीने में, चाहे देखने में, किसी के रूप रंग में, और सब विकृतियां सब प्रकार के विकार वहां से उत्पन्न हुए, दृष्टि से गए अंदर, चिंतन चला, विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, फिर समस्याएं खड़ी हो गई, जितने विघ्न आते हैं जहां भी आते हैं। आज दुनिया के अंदर भी जो विघ्न है, इतनी हिंसाएं हैं, बलात्कार हैं, अपहरण हैं, जो कुछ है, उन सब के पीछे व्यक्ति देहमान के अधीन होने के कारण अनकंट्रोल है, अपने पर कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर उसका शासन नहीं है। देखा, उत्तेजित हुआ और कर लिया, फिर जेल में भोग रहा है, सजाएं काट रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है। एक मिनट का जोश नहीं रोक सका, एक मिनट का अपनी उत्तेजना नहीं रोक सका, और उसके कारण वो पश्चाताप के अंदर जल रहा है। बाबा ने हम सबको इसका समाधान बताया, जितना समय हो मैं आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। ये पहली श्रीमत है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। जिस ब्राह्मण बच्चे ने यह अभ्यास कर लिया, उससे कोई ऐसे कर्म नहीं होंगे जिन कर्मों के कारण उनको पश्चाताप करना पड़े, दुख हो। कोई भी विघ्न आएगा, आत्मिक स्थिति इतनी शक्तिशाली स्थिति है जो बाबा के साथ का अनुभव कराती है, उनकी टचिंग का अनुभव कराती है, आने वाले विघ्नों को पहले से परख लेता है, समझ जाता है। और बाबा कई बार कहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं तो बच्चों को टच करता हूं, लेकिन मेरी टचिंग को बच्चे कैच नहीं करते, तो मैं क्या करूं। फिर दोष देते, बाबा मदद नहीं करता। अगर आपने अपनी बुद्धि को बहुत इधर उधर की बातों में बिजी रखा है, इंगेज रखा है, और बाबा कहे बच्चे यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो आप उसकी टचिंग को कैच नहीं कर रहे हो। इसलिए क्या करना, अगर किसी भी विघ्न को सहज पार करना है, तो इस बुद्धि को बहुत शांत और निर्मल बनाओ, स्वच्छ, क्लीन और क्लियर। बुद्धि अगर क्लीन क्लियर है, आपको दूर से पता चलेगा ये व्यक्ति कैसा है, किस रूप में आया है, किस भावना से आया है, क्या करने आया है, इसके विचार क्या हैं, वो भी आप अंदर से समझ सकेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल है, स्वच्छ है। इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी बुद्धि को मलिन नहीं करो, कभी भी इसमें व्यर्थ चिंतन करके उसको भारी नहीं करो, कभी थकाओ नहीं, इसको बहुत लाइट रखो। जिसकी बुद्धि बहुत हल्की है, लाइट है, उसको पता चल जाता है ये आने वाला है, ये होने वाला है, और जब पता चलता है तो अपने को सेफ कर लेता है, उसे बच जाता है। खुद को नहीं पता चलता तो बाबा उसको टच कर देता, बच्ची ये करना, यहां जाना, यहां नहीं जाना। इसलिए वर्तमान समय कलयुग में आने वाले विघ्नों को पार करने के लिए हरेक को बुद्धि पर बहुत अटेंशन का पहरा देना है। बुद्धि बहुत स्वच्छ रहे, बुद्धि सदा सालिम रहे। मम्मा का एक वाक्य सुनाता हूं, मम्मा की मुरलियां छोटी छोटी सुनते होंगे आप सब। मम्मा कहती थी, कई बच्चे 6 मास बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, खूब कमाई करते हैं, योग करेंगे, ब्रह्मा भोजन खाएंगे, सेवाएं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कमाई करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कोई एक छोटी सी बात अच्छी नहीं लगी, 6-8 मास के बाद इतना उत्तेजित हो जाते हैं, आवेग आवेश में आ जाते हैं, जो 6 मास की हुई कमाई चट कर देते हैं, एक सेकेंड में खत्म कर देते हैं। 6 मास मेहनत करने वाला एक मिनट का जोश कंट्रोल नहीं कर पाया, सारी कमाई खत्म हो गई, और फिर पश्चाताप, दुखी है, परेशान है, मन डिस्टर्ब हो गया। उसमें भी मम्मा की शिक्षा यह रही कि अगर शरीर को कुछ भी हो जाए, मन को डिस्टर्ब नहीं करो, बुद्धि को बहुत सालिम बना करके रखो। बुद्धि सालिम है तो शरीर के पेपर को, उस विघ्न को आप सहज पार कर सकें। और कोई ऐसा पेपर आ भी गया अचानक पिछले हिसाब किताब के कारण, बहुत सहज धैर्यता से कुछ सहन करके पार कर लेंगे, कुछ धैर्यता से पार करेंगे, जल्दी हलचल में नहीं आएंगे, उलझेंगे नहीं, क्या क्यों में परेशान नहीं होंगे। और एक श्रीमत सदा ध्यान पर रहे, विघ्नों का कारण है। तीन कारण बाबा ने परसों की मुरली में सुनाए थे, अंडरलाइन किया हुआ शायद। एक बाबा ने कारण बताया संग। अगर कोई कमजोर का आप संग करेंगे, उस संग का असर पड़ते ही आपकी मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए संग तारे कुसंग डुबोए, ऐसा कोई संग नहीं करना जो कुसंग के रूप में आपके मन को विचलित कर दे। संग बहुत बड़ा कई बार विघ्न रूप बन जाता है, और कमजोर का संग करने वाला तो सदा ही कमजोर रहता है। दूसरा बाबा ने कहा, सबसे बड़ा विघ्न ब्राह्मणों के आगे आलस्य है। अगर आलस्य को जीत नहीं पाया, एक आलस्य है, उसका एक भाई और है अलबेलापन। छह विकारों पर जीत होने के बाद भी कई लोग पांच विकारों पर जीत होके छठे का नंबर जब आता है तो वो नहीं जीत पाते। अमृत वेले उठने के समय, मुरली क्लास के समय, सेवाओं के समय आलस्य वार करता है, मुरली सुनने नहीं देता है, योग करने नहीं देता है, उस आलस्य पर जीत हो सकती है क्या? उसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, उसके लिए बुद्धि को वर्क देना होगा, बुद्धि को चिंतन में लाना होगा। कई लोग बुद्धि को शांत करके बैठते हैं, फट से सो जाते हैं इसे। इसलिए इसको चिंतन दो, उसको विचार दो, अच्छे अच्छे खुशी के नशे के संकल्प दो, जो आलस्य आपके मार्ग में विघ्न न बने। नहीं तो कमाई के समय, प्राप्तियों के समय बाबा तो कितने अच्छे अच्छे उदाहरण देख के बताता है। बच्चे देखो, जब मैं बिजनेस करता था, रात के समय 12 बजे 1 बजे जब स्टीमर आता था, शिप आता था, हम लोगों को नींद नहीं आती थी। अभी इतने अच्छे ग्राहक आए, इतने अच्छे ग्राहक आए, कमाई होती है तो नींद नहीं आती, भाग जाती, पूरी पूरी रात जागते थे। बाबा ने बिजनेस के अनुभव सुनाए हैं ना, ये सब। जिनकी कमाई नहीं होती है उनके अंदर आलस्य आता है। हमारी कमाई इतनी अच्छी हो रही है, कदम कदम में हम पद्मों की कमाई कर रहे हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, उनके साथ रू रिहान कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान चिंतन कर रहे हैं, उससे अच्छा वातावरण क्रिएट हो रहा है, वातावरण के विघ्न खत्म हो रहे हैं, कई आत्माओं को हमारी योग की शक्ति से मुक्ति मिल रही है। अब ये पता ही नहीं चलता लोगों को। आज अगर 500 हजार भाई बहने एक रस एक टिक स्थिति में स्थित हो जाएं, जो पवित्रता की पवित्र किरणें जाएंगी, कितनी अपवित्र आत्मा इस वायुमंडल से मुक्त हो जाएंगे। सूक्ष्म सेवा है, मनसा सेवा है, कितने के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कितनी आत्माएं सहारे का अनुभव करती हैं। कुछ समय पहले एक जगह पर टर्की की तरफ भूकंप आया था, उसके बाद वहां का एक समाचार आया, अखबारों में यहां निकला था, भारत में भी। कई दिनों के बाद उस मलबे को हटाने के बाद एक छोटा बच्चा मुस्कुराता हुआ उस मलबे के अंदर से निकला। इतना छोटा नहीं था, बोल सकता था, थोड़ा आयु बड़ी थी। जब उसने उनको निकाला, उसको कोई भी प्रकार की भय नहीं, चिंता नहीं, टेंशन, ऐसा खुशी खुशी से अंदर से बाहर आ गया। कई दिनों के बाद तो उससे लोगों ने पूछा, तुमको प्यास भूख नहीं लगी क्या, तुमको कुछ नहीं हुआ क्या? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने अखबारों में लिखा था, कोई सफेद ड्रेस वाले मेरे पास आते थे, कोई फरिश्ते आकर के मेरी रक्षा कर रहे थे, मुझे कुछ खिला के जाते थे, पिला के जाते थे। कौन थे फरिश्ते? वो कभी सोचा ही नहीं होगा आप लोग, हम भी हो सकते हैं। बाबा ऐसे थोड़ी कहता बच्चे सेवा करो सेवा करो, योग में बैठना यही सेवा है। हम कहीं जा थोड़ी नहीं देने के लिए किसी को। देने वाला दाता तो बाबा कहता मैं हूं, तुम क्या दोगे, लेकिन दिलाऊंगा तो तुमसे ना। तुम अपनी ऐसी अच्छी स्थिति में बैठो, एकदम लाइट होकर के बैठो, बाबा आपको यूज करेगा। जहां जिस बच्चे की जरूरत होगी, जिसकी जो आवश्यकता होगी, उसको आपके द्वारा सहयोग दिला देगा। आप ही फरिश्ता बनके उनको मदद करेंगे, उनके रक्षक बनेंगे। इसलिए इन विघ्नों के अधीन होकर के ये विघ्न है, ये विघ्न है, ये विघ्न है, कई तो माताएं हमारी बड़ी दुखी होकर के, मेरा पति बहुत विघ्न डालता है, मेरा ये बहुत विघ्न डालता है, बच्चा बहुत विघ्न डालता है। अरे विघ्न डालता तो उसका हल भी तो बताता है बाबा, वो तो डालेगा क्योंकि तुमने भी कुछ किया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में उसको सताया होगा, आया है विघ्न। बहुत योग युक्त होकर के बाबा की याद का जादू मंत्र करो, वो तो कर सकते हो ना, वो जादू मंत्र नहीं करने लगना, लेकिन ऐसे प्यार से पवित्र किरणें बाबा की याद की भोजन में मिलाओ। एक जगह मैं गया, एक बांधेली माता मेरे पास आई, छिप करके क्लास के बाद आई अकेले में, कहती भाई जी मुझे मधुबन का तोसा दे दो। अब मेरे पास दिल खुश मिठाई थी, हमने दिल खुश मिठाई ले जा, कहती नहीं मुझे तोसा ही चाहिए। क्या करेगी तोसा, कहती वो हमारे हाथ का वो टोली नहीं खाता है, जब हम कभी यहां से ले जाते हैं भोग या कुछ भी छिपके वो फेंक देता है, कहते इसमें जादू है। अभी तोसा अगर आप दोगे ना तो उसमें चाय में मैं डाल दूंगी और चाय छान के पिला दूंगी, वो तो पी लेगा, वो ठीक हो जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो ये विधियां हैं, युक्तियां हैं, जितनी भावना है योग युक्त स्थिति है। अगर आप योग में बनाया हुआ भोजन खिला रहे हो, सवेरे जब वो सोया हुआ है मन शांत है, बाबा की किरणें ले रहे हैं, उस आत्मा को दे रहे हैं, बाबा आपका बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे नहीं कहना है तो राक्षस है। कई लोग उसके लिए इतना सोचने लगे तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अरे शुभ भावना का जादू है, ये बहुत अच्छा आपका बच्चा है, आपने मुझे अपना बनाया तो इसको क्यों छोड़ा, इसको भी अपना बना के दिखाओ, जरूर सहयोगी बनेगा, बाबा आपका ही रत्न है। ऐसे ऐसे बहुत पॉजिटिव विचार करके सकारात्मक चिंतन से बाबा की किरणें आई और उस आत्मा के मन पर बुद्धि पर गई और परिवर्तन हो जाएगा, विघ्न डालना बंद कर दे। एक दिन डालेगा, दो दिन डालेगा, कंटिन्यू 21 दिन तक प्रयोग करके देख लो, धीरे धीरे विघ्न खत्म। कितनी माताएं निर्बंधन हो गई। इसलिए कोई भी विघ्न का वर्णन नहीं करो, आते हैं अपने संस्कारों से भी आते हैं, संबंधों से भी आते हैं, अपना कोई ऐसा कमजोर संस्कार स्वभाव बना हुआ है, आदत बनी हुई है, हम संगठन में नहीं चल पाते। संगठन में चलने के लिए सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। अब वो शक्ति नहीं है और हम कहते भाई हमारा, हम वहां गए ना वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ध्यान देना, हमें निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो दृष्टि बड़ी निर्मल रखो, बोल पर बड़ा कंट्रोल रखो, बोल से कई प्रकार के नए नए विघ्न खड़े हो रहे हैं। बोल दिया, हमने ना सोचा नहीं था, निकल गया, हो गया। अब तुमने तो बोल दिया, तीर कमान से निकल गया, फिर क्या होगा। कहते हैं जब वो सागर है ना, एक बहुत कहानी अच्छी रमणीक बताते हैं, सुनाता हूं आपको। जब राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बांधना था तो रामेश्वरम में एक यादगार बनाई है, वहां शिवलिंग बनाया है, वहां शिव बाबा की उन्होंने पूजा की और सागर से बहुत प्रार्थना की सभी ने कि तुम मुझे रास्ता दे दो, पुल बनाना है मुझे। लेकिन नहीं सागर सुन रहा था, तो राम को भी जोश आ गया और उन्होंने तीर निकाल लिया ऐसे, और जब तीर निकाला तो समुद्र सागर डर गया कि अभी तो सुखा देंगे। खड़ा हो गया के सामने, कहता है प्रभु मुझे माफ करो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं रास्ता दे देता हूं। रास्ता तो दे दिया, रामेश्वरम का वो पुल बन गया वहां। लेकिन अब वो तीर कमान से निकल चुका था, अब क्या करूं, क्या किया। कहते ऐसे छोड़ा जो आकर के हमारे यहां राजस्थान में गिरा और रेगिस्तान हो गया सारा, सुखा दिया करके। तो ये जो बोल है ना, वो तीर जैसा है, ध्यान देना। निकल गया, बोल दिया, हो गया, संबंध बिगड़ गए, रोज झगड़ा हो रहा है, रोज टकराव हो रहा है, दो लोग आपस में मिलके बात नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान देना, जितना हो सके बाबा कहता है चुप रहो, शांत रहो, बोलना है तो मधुर बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, आवश्यक बोलो, जो नहीं जरूरी है शांत रहने में। एक चुप सौ भला, सब विघ्न खत्म हो जाएंगे अगर चुप रहना सीख जाओ तो। लेकिन बोलने के बाद फिर पश्चाताप करो, क्या करूं, बोल दिया, निकल गया, तो उसकी तो धरनी को आपने सुखा दिया, उसके अंदर तो दिल को तीर मार दिया, अभी क्या होगा, दर्द ही होगा। इसलिए दृष्टि और बोल, इन दो बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो कई छोटे मोटे विघ्न सहज पार हो जाएंगे, और पिछले जन्मों के हिसाब से कोई विघ्न आ रहा है उसको दुआओं से, योग की शक्ति से, पुण्य की पूंजी से खत्म कर लो, क्या बड़ी बात है, निर्विघ्न बन जाएंगे। ओके, ओम शांति। 11:30 हो गया।
तुम्हारे।